हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिया को वापस देखकर अकरम की खुशी का ठिकाना नहीं था। अकरम रिया को पाकर बहुत खुश था और वो तब अकरम रिया को उसके कमरे में ले गया और कहा, तुम आराम करो, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। जैसे ही अकरम वापस जाने लगा, तभी रिया ने उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया। जैसे ही रिया ने पेट पर हाथ रखा, अकरम ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और अपने बच्चे को महसूस करने लगा। उसकी आंखें एक बार फिर छलक आई थीं। रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें इस तरह से मिलेगी। सच बताऊं, मुझे तो लगा था शायद ये खबर तुम तक पहुंचने से पहले ही कहीं मैं इस दुनिया से न चली जाऊं। अकरम ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो। तभी रिया, रिलैक्स अकरम, अब मैं ठीक हूँ और थैंक यू टू मिस्टर अबीर राठौड़। पता नहीं उन्होंने कब और कैसे किया और इतनी दूर बैठे बैठे मुझे बचा लिया। तुम सही कह रही हो, मैं अबीर जी को कॉल करके उनका शुक्रिया अदा करके आता हूँ। तुम जाओ, खैर से जाओ और बात कर लो, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। अकरम ने उस कमरे से निकलकर अबीर को कॉल लगा दिया था। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह जैसे ही मेहर की आंख खुली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और इतना ही नहीं, उसकी ठीक बगल में तेजा बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। मेहर ने अपने दिमाग पर जोर डाला और सामने पड़ी खाली कुर्सी की ओर देखा। उसे सब कुछ याद आ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। मेहर को खुद पर गुस्सा आने लगा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने भाई के सबसे वफादार इंसान के साथ वो इस तरह से रात गुजारेगी। वैसे तो मेहर कितने ही लड़कों के संपर्क में आ चुकी थी, उनके साथ सो चुकी थी, लेकिन उसका उनके साथ सोने के दो मकसद होते थे। एक तो करोड़ों की डील उसके हाथ लग जाती थी, दूसरा वो जिससे भी रिश्ता बनाती थी राजवीर के सामने बनाती थी। लेकिन आज तेजा से जो रिश्ता बना था वो न तो राजवीर के सामने बना था और न ही किसी बिजनेस डील के लिए। मेहर अपने आप को एक चादर में लिपटती हुई उठी और बाथरूम में घुस गई और नहाने लगी। मेहर का नशा अब अच्छी तरह से उतर चुका था और नहाते वक्त उसे रह रहकर याद आने लगा था कि कल रात क्या हुआ था, कैसे तेजा एकदम वाइल्ड हो चुका था, किस तरह से वो उसे नोच खसोट रहा था, किस तरह से वो उसे चूस रहा था। मेहर को बाथरूम मिरर में अपना पूरा जिस्म दिखाई दे रहा था, जहाँ पर जगह जगह गहरे गहरे निशान पड़े हुए थे। मेहर ने जल्दी से शॉवर लिया और बाथरोब पहनकर बाहर निकली। उसने देखा बिस्तर पर तेजा नहीं था। शायद जब वो बाथरूम में नहाने गई, तेजा उसी वक्त वहाँ से निकल गया होगा। मेहर ने जल्दी से फुल स्लीव ड्रेस पहनी, क्योंकि वो आज हाफ शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकती थी, क्योंकि उसका पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ था। वो नहीं चाहती थी कोई उसके जिस्म का एक भी निशान देखे। मेहर जैसे ही नीचे आई, उसने देखा तेजा हमेशा की तरह ब्लैक टी शर्ट और पैंट, ब्लैक चश्मा लगाए खड़ा हुआ था। मेहर ने जैसे ही तेजा को देखा, उसके दोनों गाल लाल हो गए थे, लेकिन वो अपना रौब बरकरार रखते हुए बोली, तेजा, मुझे राजवीर सिंघानिया चाहिए, हर हाल में, इन एनी हाउ। मेहर की बात सुनकर तेजा को अपना चेहरा कुछ तपते हुए महसूस हुआ और कितने ही भाव उसके चेहरे पर आकर चले गए थे। तभी तेजा खुद को संभालते हुए बोला, ओके मैम। ऐसा कहकर तेजा बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला गया था। मेहर ने उसे लापरवाही से जाते हुए देखा और अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने लगी थी और जल्दी ही चश्मा पहनकर बड़े ही स्टाइल से वो वहाँ से निकल गई थी, इस बात से बेखबर कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द टर्निंग पॉइंट लेने वाली है। वहीं शमशेर सिंह जी ने राजवीर को हाई सिक्योरिटी के साथ एक सेना हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, जहां बड़े पैमाने पर उसका इलाज किया जा रहा था। शमशेर सिंह जी को बस राजवीर के होश में आने का इंतजार था, उसके बाद वो अपना आगे का प्लान बनाना था। वहीं दूसरी ओर अकरम का कॉल देखकर अबीर ने फोन उठा लिया था और बोला था, अकरम साहब, रिया जी ठीक है ना? तब अकरम बोला, अबीर साहब, रिया ठीक है, लेकिन आपने ये सब यूं अचानक, इतनी जल्दी कैसे? आपने रिया का पता लगा लिया और कैसे आपने अरमान ठाकुर से उसे छुड़ा लिया? तब अबीर अकरम की बात सुनकर मुस्कुलाने लगा था और बोला था, जैसे ही मुझे आपका MMS मिला, मैंने उस वक्त उस मॉल के ओनर को फ़ोन किया, क्योंकि जिस मॉल में रिया जी की किडनैपिंग हुई थी वो इस शहर के पॉपुलर मॉल्स में से एक है और वो लोग अपने हर कस्टमर की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखते हैं। और जब रोहित ने इंक्वायरी की और उसमें ये पता चला कि मॉल की CCTV फुटेज भी गायब है, तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि जरूर ये किडनैपिंग मॉल के किसी खास बंदे ने कराई है। और जब मैंने मॉल के ओनर को कॉल किया और उसे बोया कि मेरी एक फैमिली फ्रेंड को किडनैपिंग तेरे मॉल में हुई है, तब वो हड़बड़ा गया और वो बोल पड़ा, क्या वो आपके जानने वाली है? उसके बाद सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस किडनैपिंग में इस मॉल का ओनर शामिल है। तो मैंने उसे बोला था, क्या हुआ जोसेफ, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने अभी राठौड़ की फैमिली पर हाथ डाला? ये सुनते ही वो ओनर थर 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 कांपने लगा था और अपनी और अपने परिवार की जान की भीख मांगने लगा था। मेरी धमकी के कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर उसने मेरे आदमी को रिया का पता दे दिया, क्योंकि उससे बात करते करते ही मैंने अपने 10-12 आदमी उसके ऑफिस में भेज दिए थे और उन्होंने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था। असल में जोसेफ, जो कि मॉल का ओनर था, उसे अरमान ठाकुर ने खरीद लिया था और जोया का पता उगलवाने के लिए उसने रिया जी का किडनैप करवाया था, ताकि तुम और रिया इसके सामने झुक जाओ और उसे जोया का पता बता दो। अब मैंने जोसेफ को विटनेस बनाकर पेश कर दिया है और अरमान ठाकुर पर किडनैपिंग के चार्जेस लगा दिए हैं, जिससे वो बच नहीं सकता है और महज 15 दिनों के अंदर अंदर खुद को बेगुनाह साबित करके उसे ये देश छोड़कर जाना होगा। और ये 15 दिन आप दोनों को संभल कर रहना होगा, क्योंकि अरमान इस वक्त जख्मी है और वो कुछ भी कर सकता है। वैसे मैंने पैलेस की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी 2 दिनों के अंदर अंदर रिया जी को मैं यहाँ जोया के पास बुला लूँगा और आपको तब तक वहाँ सब कुछ संभालना होगा जब तक कि मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता है, अबीर ने कुछ सोचते हुए अकरम से कहा था। अबीर की बातें सुनकर अकरम के चेहरे पर भी एक स्माइल तैर गई थी और उसने ऊपर की ओर मुंह उठाकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया था और बड़े ही ध्यान से अबीर राठौड़ की बात सुनने लगा था। अबीर ने एक झटके से अकरम को सारी बात समझा दी थी। अबीर से बात होने पर अकरम अपने आप को काफी ज्यादा हल्का फुल्का महसूस करने लगा था और अब उसने अपने दिमाग से अरमान ठाकुर का खौफ पूरी तरह से निकाल दिया था। अकरम को खामोश देखकर अबीर बोला था, क्या हुआ अकरम साहब, कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? अकरम की बात सुनकर अकरम अपनी सोच से बाहर आया और बोला, नहीं नहीं, वो बस मैं ऐसे ही सोच रहा था कुछ। तब अबीर बोला, अकरम साहब, मेरे रहते आपको दोनों को किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अबीर उसे कुछ और कहना चाहता था कि तभी अबीर की नज़र वॉशरूम से अपने बालों को तौलिए से साफ करती हुई जोया पर पड़ी। जोया को देखकर अबीर करता रह गया, उसके मुँह से एक भी वर्ड नहीं निकला था। उधर से अकरम कोई जवाब न पाकर सुनकर कुछ हैरत में पड़ गया और बोला था, अबीर साहब, हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? लेकिन अबीर के तो इस तरह से होश उड़ गए थे, वो कुछ बोलने या सुनने की हालत में नहीं था।
जोया ने अबीर का लॉन्ग व्हाइट कुर्ता पहना था, उसके घुटनों से नीचे नीचे की गोरी गोरी टांगे दिख रही थीं और वो बेपरवाही से अपने बालों को मिरर के सामने खड़ी होकर सुखा रही थी। अबीर के लिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि उसका कुर्ता ज़्यादा सफ़ेद है या फिर जोया एकदम निखरी निखरी सी बड़ी ही खूबसूरत लग रही थीं। लेकिन तभी अबीर को फ़ोन पर अकरम की आवाज़ सुनाई दी। हेलो अबीर साहब, हेलो, आप ठीक तो हो ना? तब अबीर बोला, ओ हाँ हाँ, हाँ अकरम साहब, मैं ठीक हूँ, वो दरअसल वो सुंदर। अबीर ने इतना ही बोला था कि तभी अकरम बोला, क्या सुंदर अबीर साहब, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब अबीर अपने माथे पर हाथ मारता हुआ बोला, वो कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। तब अकरम बोला, ओ ओके अबीर साहब, मैं आपको कॉल का इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर अकरम ने फोन काट दिया और अबीर, जो बालकनी में कमरे के दरवाजे के बिल्कुल ठीक सामने खड़ा था, वो जोया को देखते हुए अंदर चला गया था और उसके ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया था। और जैसे ही जोया को मिरर में अबीर का रिफ्लेक्शन देखा, वो तुरंत चौंक कर एक झटके से पीछे मुड़ी। जोया के अचानक पीछे मुड़ने से जोया के घने लंबे रेशमी बाल सीधे अबीर के मुंह पर पड़े थे। क्योंकि जोया के बाल गीले थे, सो अबीर का पूरा मुंह गीला हो गया था। अबीर ने अपने एक हाथ से अपने चेहरे पर पड़े हुए पानी को पोछा और कड़ी कड़ी आंखों से जोया को देखने लगा। जोया को लगा कि उसने अबीर को नाराज कर दिया और वो एकदम से हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया लेकर अबीर का मुंह साफ करने लगी थी और बोलती जा रही थी, आई एम सो सॉरी अबीर जी, मैंने आपको देखा नहीं। जोया ये सब बोलती जा रही थी और अबीर का फेस अपने तौलिये से साफ करती जा रही थी। इस चक्कर में वो अबीर के कितने करीब चली गई थी उसे एहसास ही नहीं रहा था और जोया ने अपने आप को ध्यान से नहीं देखा था। जल्दी जल्दी में वो उस कुर्ते का ऊपर का बटन बंद करना भूल गई थी, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट का काफी हिस्सा अबीर को नजर आने लगा था। अबीर जोया को इतने करीब पाकर अपने होश खोने लगा था और उसकी नजरें कभी जोया के उभरते हुए अंगों पर जाती तो कभी जोया के नर्म गुलाबी होठों पर जाकर टिक जाती। अबीर के लिए अब खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। उसका गला बुरी तरह से सूखने लगा था।